أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. آخرت کے حوالے سے جو ہماری گفتگو تھی تو ظاہر ہے کیونکہ موضوع کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے کہ اس میں بہت سارے سمجھ لیں اسپیکٹس ہیں جن کو ہمیں کور کرتے ہوئے چل رہے ہیں. ہم اس طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں کہ پہلے ہم نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آخرت کوئی انڈیپینڈنٹ زندگی یا انڈیپینڈنٹ چیز کا نام نہیں ہے, بلکہ آخرت 100% اسی زندگی پر ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں اس کے ایک ایک لمحے کا امپیکٹ ہماری آخرت پہ پڑ رہا ہے. تو یہ اگر کوئی اس سوچ میں ہے کہ ہم اس زندگی میں اس دنیا میں جو چاہیں کرتے رہیں اور آخرت میں جا کے یا شفاعت مل جائے گی یا معاملات ٹیڑھے معاملات سیدھے ہو جائیں گے, تو یہ 100% غلطی ہے اور اس کو فوری طور سے اس خیال خام کو دماغ سے نکال دینا چاہیے. تو پہلے ہم نے جب یہ اسٹیبلش کیا کہ اس زندگی کی پرائم امپورٹنس ہے کہ ہم اس کو کیسے گزارتے ہیں, اس بیسس پر ہی ہماری انفینٹ لائف ڈٹرمن ہوگی. تو اب ہم نے پھر اس کے بعد اس چیز کو ڈسکس کیا کہ خود اس زندگی کی کیا امپلیکیشنز ہیں, اس زندگی میں ہمارے لیے پلس مائنس کیا ہیں. تو ہم نے آپ کو سمجھایا کہ اس زندگی میں بائی ڈیفالٹ بائی ڈیزائن ایک قسم کے ایجنٹس وہ ہیں جو ہمیشہ آپ کا رستہ روکتے ہیں اور مسلسل آپ کو صحیح رستے سے ہٹانے اور بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس ایجنٹ کا نام شیطنت اور شیطان ہے اور اس پورے سسٹم کا نام طاغوتیت ہے یا طاغوت ہے. اور اس کے برعکس, یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب ہم اس یا انسان اس زندگی میں موجود ہیں تو خالی نگیٹو ہی افیکٹس ہمارے اوپر اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں, بلکہ خدا نے نگیٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پازیٹیو چیزیں بھی رکھی ہیں. اور وہ آیتیں پھر ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائیں کہ جہاں یہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ مومنین کے لیے ملائکہ مغفرت بھی کرتے ہیں, ملائکہ ان پر اترتے بھی ہیں اور ملائکہ ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں, اور اسپیشلی وہ لوگ جو طالبان علم ہیں, علم کے رستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کے قدم زمین پر نہیں ہوتے بلکہ ملائکہ کے پروں پر ہوتے ہیں.
کوئی بھی علم یا
حقیقت, مطلب علم سے مراد جو حقیقت و سچائی کو جاننا چاہے کسی بھی رستے سے آئے, لیکن اس کا اصل مسئلہ اور اس کا اصل انٹینشن ہو حقیقت اور سچائی کو جاننا ہو پہچاننا, تو اس کے قدم زمین پر نہیں ہوتے بلکہ ملائکہ کے پروں پر ہوتے ہیں. تو دونوں چیزیں موجود ہیں. یعنی ہم خالی یہ سمجھتے ہیں یا ہم خالی اس چیز کے بارے میں پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ خدا نے سارے کے سارے شیاطین کو ہماری جان کے پیچھے لگا دیا. نہیں, شیاطین کو جان کے پیچھے نہیں لگایا ہے, بلکہ شیاطین کی ولایت صرف ان کو نصیب ہوتی ہے کہ جو شیطنت کی راہ کو پسند کرتے ہیں, جو چوز کرتے ہیں, اس کو لائک کرتے ہیں, ان کو شیطان کی سرپرستی نصیب ہوتی ہے. ورنہ جو ایمان کی راہ پر ہے اس کے لیے خدا کی سرپرستی ہے اور ملائکہ ان کے ہمراہ ہیں اور ان کے ساتھی ہیں اور ان کے گائیڈ ہیں اور ہیلپرز ہیں. اچھا, پھر ہم نے, کیونکہ ہمارا اصل موضوع آخرت ہے, تو آخرت کی طرف بڑھتے ہوئے پھر ہم نے اس چیز پر بات کی کہ اس لائف کو بہرحال اینڈ ہونا ہے, لیکن اس لائف کو ختم کرنے کے حوالے سے قرآن صرف ایک میکینزم کی بات نہیں کرتا بلکہ تین چیزوں کی بات کرتا ہے کہ یہ زندگی کس طریقے سے اپنے اختتام کو پہنچے گی اور نئی زندگی کیسے شروع ہوگی اور ہم کیسے اگلے مرحلے میں جائیں گے. اس حوالے سے تین باتیں کی گئی ہیں, ہم سے تین ڈفرینٹ ڈائمینشنز کا تذکرہ ہے. मुख्तसरन कि जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि पहली चीज़ है अजल। अजल का मतलब है एक मुअय्यना मुद्दत, एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, कि हर मौजूद जो इस ज़िंदगी में है वो एक वक्फे के बाद उसको यहाँ से जाना है, इस लाइफ को ख़त्म होना है, मतलब दैट इज़ डन। इसमें किसी को भी कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। इसमें कमी बेशी हो सकती है, कमी ज़्यादती हो सकती है। जैसे हमने कहा कि अगर कोई इंसान सेहत के उसूलों का ख्याल रखता है तो उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग करेगी या करना चाहिए, अगर सेहत के उसूलों को ख़राब करता है तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। यानी ये सब चीज़ें मौजूद हैं कि अजल जो है, जब खुदा ने कहा कि उससे कोई आगे नहीं जा सकता, पीछे नहीं जा सकता, तो इसका हतमी मतलब ये नहीं कि इसमें कमी ज़्यादती नहीं हो। या सिले रहम और क़ता रहम पर तो हदीसें आप सबने सुनी भी होंगी कि जो उम्र को बढ़ाती हैं और घटाती हैं। दूसरी बात हमने की कि जब इंसान की ये मुद्दत हयात ख़त्म होगी तो इंसान यहाँ से अगली दुनिया में मुंतकिल होगा। इसको क्या कहा गया? तवफ़ा, यानी इंसान मुतवफ़ी हो जाएगा। तवफ़ा का मतलब ये होता है कि बग़ैर किसी कमी और ज़्यादती के एक चीज़ को पूरा का पूरा एक जगह से उठा के दूसरी जगह पहुंचा देना। जैसे वफ़ा या ईफा या अहद, ये सारे के सारे लफ्ज़ भी कॉमन रूट है कि इसका मतलब है एक चीज़ है उसको बग़ैर किसी कमी के या ज़्यादती के आप लें और एक मकाम से उठा के दूसरे को दे दें या उसके हवाले कर दें। ठीक, तो हमें मुतवफ़ी होना है, और मुतवफ़ी होने में जो उस वक्त भी जो पैगंबर अकरम के सामने लोग थे, ख़ास तौर से कुफ्फार और मुशरिकीन, उन्होंने सबसे पहला सवाल ये उठाया कि हम तो देखते हैं कि जो शख्स दफनाया गया वो मर गया, उसका जैसे मिट्टी मिट्टी हो गया, हड्डियां बिखर गईं, तो ये क्या मतलब है, क्या चीज़ जा रही है? हम तो यहाँ उसको देख रहे हैं कि वो मर गया, ख़त्म हो गया, आप कह रहे हैं कि वो अगले आलम में चला जाएगा, मुंतकिल हो जाएगा। तो उसका जवाब सूरह सजदा की आयत नंबर 10 में हमने आपको पढ़ के सुनाया था कि कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किला बिकुम, यतवफ़ाकुम, तुमको खुदा मुंतकिल करता है मलकुल मौत के ज़रिए से, न कि तुम्हारे जिस्म को। इस पर आगे चल के इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद एलैबोरेट करेंगे इस पॉइंट को। यानी जो चीज़ अगले आलम में मुंतकिल हो रही है बग़ैर किसी प्लस माइनस के, वो इंसान का नफ्स है, वजूद इंसान है, न कि ये जिस्म इंसान। और इस जिस्म इंसान के हवाले से तो ये बात कही भी नहीं जा सकती, क्योंकि एक यानी कि जैसे लोग कहते हैं कि भाई हम क़यामत के दिन उठाए जाएंगे, उठाए जाएंगे से मतलब ये लेते हैं कि ये जिस्म, इसी जिस्म को ज़िंदा कर दिया जाएगा। तो इस पर सबसे पहला इश्काल जो वारिद होता है, कौन से जिस्म को ज़िंदा कर दिया जाएगा? क्योंकि आप अपनी बर्थ से लेके और डेथ तक आपका जिस्म मुसलसल तब्दील हो रहा है, बायोलॉजिकली उसमें मुसलसल तब्दीली आ रही है। बुढ़ापे का जिस्म होगा, जवानी का जिस्म होगा, बचपने का जिस्म होगा, फिर उसके बाद ज़्यादातर लोग जैसे बीमार पड़ गए, या कोई इंसान ऐसा है कि जिसका जिस्म ही नहीं बचा, यानी जो लोग खुदा ना खास्ता जल के ख़त्म हो गए या पानी में डूब गए, पूरी की पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गई, कुछ बचा ही नहीं उसमें से, क्या क्या उठाया जाएगा? तो इस पर फौरन यानी ज़ाहरी और मादी जिस्म के ऊपर जब बात होती है तो फौरन ये इश्काल आता है। ठीक है, और इसी हवाले से फिर जो बात की गई कि जिस्म होगा, यानी क्योंकि कुरान ने मादे जिस्मानी का बिल्कुल वजाहत से जिक्र किया है, तो जिस्म होगा लेकिन जिस्म दुनियावी और मादी नहीं बल्कि जिस्म उखरवी होगा। और उसकी दलील क्या है? उसकी दलील यह है कि जो जिस्म वहां पर मिलेगा वो 70 साल तक एक लज्जत को उठाने के काबिल है। जो जिस्म वहां पर मिलेगा वो आग में जलने के बावजूद ख़त्म नहीं होगा, ऐसी कोई क्वालिटी दुनिया के जिस्म में नहीं पाई जाती। सही, तो जी
मतलब तो एक तरह से थोड़ी सी गुड न्यूज़ है जो जन्नत में, सॉरी दोज़ख में जलें उनके लिए
नहीं, मतलब उनके लिए तो बहुत ही अजियत है ना,
क्योंकि इस इस बॉडी से तो बेटर ही रहेंगी ना बॉडी तो।
नहीं वो तो सही है, देखें ये बिल्कुल ऐसा है कि खुदा ने हमें एक इनाम दिया, एक तोहफा दिया, लेकिन वो तोहफा जो है वो टोटली मेरे लिए तकलीफ पैदा करने का सबब बन रहा है, उससे मुझे आराम कुछ नहीं मिल रहा। यानी कि जैसे दुनिया की जिंदगी में है कि चलो जिस्म जितनी भी तकलीफ उठाए, एक दफा मर गया तो जान छूटी, इस दुनिया में ये तो है ना कि उसके बाद तकलीफ खत्म हो गई, लेकिन वहां तो है ही नहीं कि एक दफा मर के खत्म हो गया फिर जिंदा हो गया। यानी उसके लिए मौत नहीं है, उसके लिए खात्मा नहीं है, उस जिस्म में पायदारी है। तो अगर इंसान जन्नत में है और नेमतों से लुत्फंदोज हो रहा है तो बेहतरीन चीज है कि वैसी लज्जत उठा सकेगा कि जो लज्जत खत्म नहीं होने वाली। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता तकलीफ के डोमेन में चला गया तो यही चीज उसके लिए बायस अज़ियत बन जाएगी, मतलब ये तोहफा ही तकलीफ का सबब बन जाएगा। कि और इस किस्म के आयतें कुरान करीम में हैं कि वो कहेंगे दोज़खियान के किसी सूरत से इसको ख़त्म कर दो, क्या निकलने का कोई रास्ता है इससे, लेकिन वो चीज़ उनको नहीं मिल पा रही होगी। ठीक है, तो बुनियादी तौर से क्या है तवफ़ा, तवफ़ा का मतलब है इंतकाल, मुतवफ़ी होना, यानी इंसान के नफ्स का पूरे का पूरा बगैर इन्हें विद ऑल इट्स एक्सपीरियंसेस ऑफ गुड एंड एविल, इन्हें जितना भी हम कर रहे हैं वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, हमारे नफ्स में स्टोर हो रहा है। उस नफ्स को उस मरकज कल्ब समेत पूरे का पूरा यहां से उठा के अगली दुनिया में पहुंचा दिया जाएगा। और ये काम कौन करेगा? कुरान करीम ने तीन हस्तियों का जिक्र किया, कहीं पर मलाइका का जिक्र किया तवफ़ा के हवाले से, इस आयत में सूरह सजदा की मलकुल मौत का जिक्र किया, कुल यतवफ्फाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम, और सूरह ज़ुमर में अल्लाह ने खुद अपना नाम लिया, अल्लाहु यतवफ्फल अनफुस हीन मौतहा वल्लती लम तमुत फी मनामहा, कि अल्लाह मुतवफ़ी करता है नफूस को मौत के लम्हे पर, और जिनको अभी मौत नहीं आई तो नींद की हालत में, यानी कि जो हम एक्चुअली ख्वाब देख रहे होते हैं तो दर हकीकत हम मुतवफ़ी हो चुके होते हैं। मुतवफ़ी का मतलब है कि हमारा नफ्स इस बॉडी से निकलकर एक और डोमेन में मुंतकिल हो जाता है। और ये आयत जो है ना, ये बहुत ही अजीब आयत है सूरह ज़ुमर की, क्या अल्लाह यतवफ्फल अनफुस हीन मौतहा वल्लती लम तमुत फी मनामहा, कि और जिन लोगों को मौत नहीं आई उनको नींद की हालत में उनके नफूस को खुदा मुंतकिल करा देता है, जिस पर मौत की कंडीशंस पूरी हो गई उनको रोक लेता है, और जिनके लिए अभी मौत की कंडीशन पूरी नहीं हुई उनके नफूस को नींद के बाद दोबारा जिस्म में भेज देता है, दाखिल कर देता है। और इस वजह से रिवायतों में कहा गया कि नींद मौत की बहन है, यानी अगर इंसान मौत के एक्सपीरियंस को समझना चाहे तो नींद की हालत से समझे, कि नींद में जिस तरीके से कि इंसान पर गुनूदगी तारी होती है, फिर इंसान अपने जाहिर से और अपने गिर्दोपेश से बेखबर हो जाता है, फिर इंसान का नफ्स बॉडी को छोड़कर एक दूसरे डोमेन में चला जाता है जिसको आलम मिसाल कहा जाता है। आलम मिसाल की खसूसियत यह है कि वेयर एवरी थिंग इज़ गवर्न बाई अवर थाट्स नॉट बाई अवर अपेरेंट इंटेंशंस, यानी यह सबसे ख़ास बात है कि वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं आलम बरज़ख में या आलम ख्वाब में, वो सब की सब हमारी थाट्स और हमारे एक्सपीरियंस से कंट्रोल हो रही होती हैं। और इसी चीज़ को कुरान करीम ने कहा कि कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीनतुन इल्ला अस्हाबल यमीन, हर नफ्स जो कमाया है उसमें गिरवी है, रहन है। रहन का मतलब समझते हैं, यानी आप एक चीज़ दे के कहते हैं प्रॉपर्टी रहन रख ली, यानी कि एक वो कीमत है कि जिसके बदले में वो चीज़ किसी और की हो गई, किसी और की मिल्कियत बन गई। तो कुल्लु नफ्सिम बेमा कसबत रही न तुन, अपनी कमाई के बदले में रहन है, जो कुछ उसने कमाया है उसी चीज़ ने नफ्स पे काबू कर लिया, यानी नफ्स गोया उसी की मिल्कियत बन गया है, جو کچھ ہر نفس کما رہا ہے اپنے علم اور عمل کے ذریعے سے. الا اصحاب الیمین, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس ڈومین سے باہر ہیں, یعنی کہ ان کو ان کی کمائی سے بہت بڑھ کے ملے گا, یا وہ اس سے بظاہر جو کمایا ہے اس سے بہت ایلیویٹڈ لیول پہ چلے جائیں گے, یعنی جیسے شہداء, جیسے مقتولین فی سبیل اللہ, جیسے علماء. جی اصحاب یمین وہ کہ جو نجات پا گئے, یعنی کہ اصحاب یمین کا مطلب یہ ہے کہ جو نفس اپنے ایمان کے ذریعے سے نجات یافتہ ہو گیا اس کے لیے اس کی کمائی سے بڑھ کر ہے. وَلَدَيْنَا مزید, یعنی خدا جب مومن کے ساتھ معاملہ کرے گا تو جتنا مومن نے کمایا ہے اتنا نہیں دے گا, بلکہ اس سے کہا کہ کتنا زیادہ دیں گے وہ ہم جانتے ہیں, تو ہم پہ چھوڑ دو, ہم پہ اطمینان رکھو, لیکن اتنا نہیں دیں گے کہ جتنا تم نے کیا. اور میں کہ ابھی درس سن رہا تھا آیت اللہ جوادی عملی کا, اس میں انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا پڑھی, کیا لطیف جملہ ہے, وائے ہو اس پر جس کا ایک دس پر غالب آ جائے. بات سمجھ میں آئی؟ وائے ہو اس پر, افسوس ہے اس انسان پر, اس انسان کے لیے تباہی ہے جس کا ایک دس پر غالب آ جائے. کیا مطلب؟ کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جب تم برائی کرتے ہو, برا عمل کرتے ہو, تو ایک کو ایک لکھتے ہیں, اور جب تم نیکی کرتے ہو تو ایک کی جگہ دس لکھتے ہیں. تو امام فرما رہے ہیں کہ اس شخص پر لانا تو تباہی ہے کہ جو اتنی بھی نیکی نہ کر سکے, خدا 1:10 کا ریشو منیمم دے رہا ہے تمہیں ایڈوانٹیج, کہ اس ایڈوانٹیج کے باوجود بھی انسان جہنم میں چلا جائے. یہاں فرماتے ہیں اس پر ویل ہو کہ جس کا ایک, یعنی وہ برائی کا ایک نیکی کے دس پہ غالب آ جائے. جی
جی
یعنی جس طریقے سے انٹینشن سے میری مراد یہ ہے کہ جیسے اس دنیا میں ہم وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے اندر نہیں ہوتا, صحیح, یعنی کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اندر سے وہ بے ایمان اور دھوکے باز ہے, لیکن اوپر سے اپنے کو ایماندار دکھا رہا ہے. تو اس لائف میں ہمیں خدا نے یہ اپرچونیٹی دی ہے کہ ہم اپنے انٹینٹس کو اس طریقے سے شو کر سکیں کہ جو اصل میں ہم نہیں ہیں. لیکن جب یہ جسم والا پردہ ہٹ جائے گا تو یہ چیز ختم ہو جائے گی, پھر ہم وہی ہوں گے جو اصل میں ہیں.
تو اسلام یہ کیوں کہا گیا کہ انٹینشن کرو گے تو پھر اس کا ایک ہی یونٹ ثواب ملے گا؟ جیسا ابھی آپ نے کہا تھا نا,
نیکی کا برائی کا ایک برائی ہے اور نیکی کا کم از کم دس ہے, کم از کم.
لیکن میں نے ابھی جو سنا تھا کہ ایک انٹینشن کا ایک ہے, نیکی کا دس ہے. اگر آپ انٹینٹ کرو گے تو اس کا ایک یونٹ ملے گا, اور اگر اس کو کر دو گے تو دس ملے گا.
نہیں, یہ اس سینس میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب سے نیکی نیت کرتا ہے اس وقت سے اس کے نام عمل میں ثواب لکھا جانا شروع ہو جاتا ہے. یعنی ابھی اس نے کام کیا نہیں ہے, ابھی صرف نیت کی ہے کہ میں صدقہ دوں گا, اور جیسے ہی انسان نے یہ نیت کی اس کے نام عمل میں لکھ دی گئی نیکی, اور جب کرے گا واقعاً صدقہ دے گا تو پھر 10 گنا لکھا جائے گا, یا 700 گنا لکھا جائے گا, یا 70,000 گنا لکھا جائے گا, ڈپینڈنگ آن کہ کس طریقے سے صدقہ دیا. تو یہ مطلب ہے اس کا کہ برائی کی نیت کی کچھ بھی نہیں لکھا گیا جب تک کہ ایکچولی اس فیل کو انجام نہیں دے دیا اس نے, لیکن نیکی کی جیسے نیت کی فوراً نام عمل میں نیکی لکھ دی گئی. نہیں, یہ انٹینٹ وہ نہیں ہے, یہ نیت وہ نہیں ہے. انٹینٹ کس سے میری مراد یہ ہے کہ ہمارا وہ ارادہ جو ہمیں وہ دکھاتا ہے جو ہم نہیں ہوتے, ایسی کوئی چیز خواب میں نہیں ہے. یعنی کہ اس عالم میں, یہ عالم مثال میں ہم وہی ہوتے ہیں جو ہم ہیں, یا جو ایکچوئل تھاٹس میرے وجود میں کے اندر ہیں, یا جو ایکچوئل کنڈیشن میرے نفس کی ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ دھوکے بازی کی گنجائش نہیں ہے اس جگہ پہ. अगले आलम में। क्या वो सब हमारे ऊपर, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई नफ्स इतना बुलंद है, इतना पाक है, तो वो उन मकामात तक रसाई हासिल कर सकता है कि हकायक़ इलाहिया को देख ले। यानी ये नफ्स की, नफ्स का सफ़र है और इट डिपेंड्स ऑन द प्योरिटी एंड एलिवेशन ऑफ नफ्स। ज़्यादातर इंसान क्या है, जब बिमा कसबत रहीनतुन, कि जो कुछ वो कमाते हैं यानी जो कुछ वो काम करते हैं उसी से उनकी थॉट्स जनरेट होती हैं, उसी से उनके एक्सपीरियंसेस बनते हैं, वो उसी के अंदर फंसे हुए हैं। बेमा कसबत रहीनतुन, उससे आगे नहीं जाते। मगर जो मोमिन है, इल्ला अस्हाबल यमीन, मगर जो मोमिन है उसके साथ फिर मामला डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं। यानी मोमिन को खुदा फिर उससे आगे बढ़ के सिखाता है, उससे आगे के दरवाजे खोलता है। और इस ईमान के दर्जे पर जो और ज़्यादा फ़ायज़ हैं, फिर उनके लिए के जो हकायक आलम बाला में हैं उनके भी पर्दे हटते हैं। अभी हम यही बात कर रहे थे कि इसका मतलब है कि उसकी मेंटल जो ग्रोथ है वो नहीं शुरू हुई अभी, अभी जहन और फिक्र के दरवाजे जो हैं वो अभी नहीं खुले।
मतलब कुछ लोग जो बहुत कम सोते हैं ना, उनको ख्वाब नहीं आते।
मुझे पता नहीं, मुझे ये नहीं पता। जैसे मैंने काफ़ी पहले नेशनल ज्योग्राफिक में इसी स्लीप और ड्रीम्स पर एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ऑथर ने पूरे मतलब क्लेम किया था एक तरीके से कि ख्वाब ब्लैक एंड वाइट होते हैं। उसके बाद से मैंने काफ़ी ज़्यादा गौर करना शुरू किया, मतलब ख्वाब में गौर करना शुरू किया कह लें आप एक तरीके से। और फिर रफ्ता रफ्ता मुझे ये महसूस हुआ कि जितना ज़्यादा मेरा मेंटल जो प्रोसेस है वो स्ट्रॉन्ग होता चला गया, तो ख्वाब ब्लैक एंड वाइट से कलर्ड हो गए और इतने अच्छे कलर्ड और इतने विविड कलर्स जनरेट होना शुरू हुए कि उसको मतलब सोच के खुशी होती थी कि क्या खूबसूरत मंजर जो मैं देख रहा हूँ। यानी कि उस कलर, कलर और उस ब्यूटी का दुनिया के कलर से कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है। तो बेसिकली ये सारा का सारा जो है ना कि वो हमारे अंदर नफ्स का आलम है कि जो आबाद होता चला जाता है और फिर उसके साथ ये सारी की सारी चीजें जनरेट होती हैं।
ऑन द अदर हैंड हम ऐसे भी जानते हैं जो ख्वाब देख रहे हैं, जागे, अरे नहीं अभी वापस जाके देखना, फिर देखने लगे, फिर जागे, अरे अभी थोड़ा, फिर देखने लगे।
तो इसका मतलब यही है ना कि नहीं, तो आपके मेंटल प्रोसेस है ना, यानी कि यूं कह लें कि आपका जो नफ्स है, बेसिकली नफ्स की दुनिया में अब आप उसको महसूस करने लगे हैं ना, आलम नफ्स को महसूस करने लगे हैं, आलम मिसाल को महसूस करने लगे हैं।
तो इससे अगर किस तरह का, अगर अच्छा ख्वाब आ रहा है या बुरा ख्वाब आ रहा है, उससे भी नफ्स की वो पता चलता।
बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि ये नफ्स की हालत को रिफ्लेक्ट करता है ख्वाब। नहीं कि हम किसी चीज से खौफजदा हैं, हम अपने नफ्स में खौफ को लेके बैठे हुए, ये सब चीजें। यानी कि तकरीबन 20 ईयर्स से मैं इस तरीके से गौर कर रहा हूँ उस पर। यानी कि पहले मैंने देखा कि जब मुझे खास तौर से हमारे पाकिस्तान के हालात में जब एक खौफ और ये वो, तो उस किस्म की चीजें आपको ज्यादा नजर आ रही हैं कि आप, या ये कि जिंदगी में आप ये महसूस कर रहे हैं कि मैं फंसा हुआ हूँ, तो आप ख्वाब में हमेशा देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं। यानी आप कहीं जा रहे हैं, दरवाजे बंद हो गए, या आप किसी भी जगह पे जा रहे हैं, एक ना एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई आपको ख्वाब में। यानी कि ख्वाब सिंबलाइज करते हैं हमारे नफ्स की हालत को। इमाम सादिक का तो नहीं है, ताबीर रोया है, और वो मेरे पास थी वहाँ पाकिस्तान में, वो बहुत मशहूर एक मतलब एक आलिम ने लिखी है, मुझे उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, ताबीर रोया नाम है उसका। और उस शख्स की हिस्ट्री भी बड़ी मज़ेदार है, कभी सुनाएंगे आपको, जिसको खुदा ने खसूसियत के साथ ये इल्म अता किया था। वो एक दर्जी की दुकान पे काम करने वाला लड़का था, उसको फिर ये इल्म अता हुआ, तो वो मतलब ख्वाबों की ताबीर का जो कहते हैं एक अथॉरिटी बना वो शख्स। तो पूरी इतनी मोटी किताब है, उसमें उसने हर चीज़ लिखी है कि ख्वाब में ये देखें तो ये मतलब, ये देखें तो ये मतलब, ये ताबीर।
तो ठीक है, आज का ख्वाब सच है।
खैर चलें अब वापस आते हैं। तो हम बात कर रहे थे तवफ़ा की, मुंतकिल होने की, ठीक है। और असल पॉइंट हमारा क्या था कि जो चीज़ मुंतकिल होती है वो इंसान का नफ्स है, न कि जिस्म है। और जब हम अगले आलम में जाएंगे या आखिरत में उठेंगे तो हमारे नफ्स को एक जिस्म मिलेगा कंपैटिबल विद द न्यू वर्ल्ड जिसमें हम जिंदगी गुजारेंगे। और उसूल भी यही कहता है कि जिस किस्म की दुनिया है, जिस किस्म के आलम में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस्म वैसे ही होना चाहिए। यानी आज की जबान में हम कहें बहुत सादा सी बात कि अगर हम मैटर की वर्ल्ड में जिंदगी गुजार रहे हैं तो जिस्म मैटर का होना चाहिए, अगर हम एनर्जी की वर्ल्ड में जिंदगी गुजार रहे हैं तो जिस्म एनर्जी वाला होना चाहिए, अगर हम कॉन्सेप्ट्स और थॉट्स की वर्ल्ड में जिंदगी गुजार रहे हैं तो जिस्म वैसा होना चाहिए।
तो ये जो जिस्म को क्या होता है, वो फना हो जाता है या वो भी
खत्म हो जाता है? मतलब जब हम एक वर्ल्ड से निकल के दूसरी वर्ल्ड में एंटर होते हैं तो वो उसकी खत्म। मैं सुनाऊंगा इंशाल्लाह आपको अगली दफा ना कुरान से ये वाकयात सुनाऊंगा जिसमें बाकायदा ये सारी की सारी चीजें बताई गई हैं, ये कॉन्सेप्ट्स डिस्कस में। तो बहरहाल ये बात इस ये तो इसमें तो समझने में कोई मुश्किल नहीं है कि क्या चीज़ मुंतकिल हो रही है। तवफ़ा का मतलब बग़ैर कमी बेशी के मुंतकिल होना, और मुंतकिल क्या चीज़ हो रही है? इंसान का नफ्स विद ऑल इट्स एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स एंड डीड्स और जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ जमा होती जा रही हैं, वो सब का सब उठा के अगली दुनिया में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। और जब जिस्म हट जाएगा तो फिर हम उसके तमाम इफेक्ट्स को देखना शुरू हो जाएंगे। यानी कि जैसे कहा गया कि जो चीज़ कही गई कि गीबत के बारे में हदीस में कहा गया कि ये जहन्नम के कुत्तों का सालन है, तो ये चीज़ कोई स्टोरी है, सिर्फ एलेगरी नहीं है, ये एक रियलिटी है जो बताई गई है। और जब हम वहाँ जाएंगे तो गीबत को इसी शक्ल में देखेंगे, ठीक है। या इसी तरीके जब हमसे कहा गया कि ये जब मोमिन अपनी कब्र में जाता है तो पांच और छः, पांच या छः नूरानी शक्लें उसको घेर लेती हैं, जिनमें से पूछता है कि तुम कौन हो, तो एक कहता है मैं तुम्हारी नमाज हूँ, तुम्हारा रोज़ा हूँ, तुम्हारा हज हूँ, तुम्हारा सदका हूँ, और उसमें एक शक्ल जो सबसे ज़्यादा हसीन उसको नज़र आती है, पूछता है तुम कौन हो, तो वो जवाब देगी कि मैं वो सुरूर हूँ। बहुत खूबसूरत जुमला है, मैं वो सुरूर, समझते हैं हैप्पीनेस, मैं वो सुरूर और वो खुशी हूँ जिसे दुनिया में तुमने अपने बरादर मोमिन के दिल में दाखिल किया था। सबसे हसीन शक्लो सूरत में उसको देखेगा। तो ये चीज़ें वो नहीं है, ये कहानियाँ नहीं हैं जो हमें सुनाई गई हैं, बल्कि ये उस आलम की रियलिटीज़ हैं जो बताई गई हैं कि ये जितने भी हमारे आमाल जिसको अभी हम समझ रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, ये सब के सब, इन सब को एक जिस्म मिल जाएगा, ये सब के सब एक शेप और एक फॉर्म में मेरे और आपके सामने आएंगे, चाहे नेक हों चाहे बद हों, ठीक है। तो जो उसूल समझ में आता है कि जिस वर्ल्ड में हम और आप जिंदा रहेंगे जिस्म ज़रूर होगा लेकिन कंपैटिबल विद दैट वर्ल्ड और मेड फ्रॉम द मैटर ऑफ दैट वर्ल्ड। यानी इस पर इसरार करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इस मिट्टी वाले जिस्म को आप लेके हर जगह घूमते रहेंगे, बल्कि आलम मिसाल में जब हम जाएंगे तो वो मिसाली जिस्म होगा, आखिरत में जाएंगे उखरवी जिस्म होगा, एंड सो ऑन।
तो वो जो आयत है सबसे पहले जिसमें इबलीस ने जो है सर झुकाने से मना कर दिया था कि इंसान जो है मिट्टी का बना हुआ है, तो वो फिर इंसान फिर मिट्टी का नहीं रह रहा है एंड में, इवेंचुअली उसकी हकीकत मिट्टी नहीं है।
खुदा ने देखें कुरान करीम की आयतों पर अगर आप गौर करें तो लक़द खलकनल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन। सुलाला किसे कहते हैं? यानी मुख्तलिफ हैं, मिन फलसाल मिन हमाइम मसनून मिन तीन लाजिब। यानी इससे आपको ये पता चलता है कि मिट्टी भी है, पानी भी है, उनका निचोड़ भी है। सुलाला कहते हैं निचोड़ और एसेंस को। खुदा ने इंसान को उस चीज़ के निचोड़ से पैदा किया है, खल्क किया है जो कि मिट्टी में है। अब आप देखते हैं ना कि यही मिट्टी है जिससे ये रोशनी निकल रही है, यही मिट्टी है जिससे आपकी पूरी आईटी चल रही है, ठीक है, यही मिट्टी है कि जो एक हवा जहाज को और ऑब्जेक्ट को 35,000 फीट की बुलंदी पे ले जाती है। मतलब सब मिट्टी से ही तो निकल रहा है ना, और कहां से आ रहा है? जितना भी स्टफ आप बना रहे हैं या जो कुछ भी आपके टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, क्या वो इस जमीन के अंदर से बाहर से कोई मटेरियल आ रहा है उसका? तो ये चीज खुद हमें समझाने के लिए काफी है कि इस मिट्टी में क्या क्या पावर्स हैं और खुदा ने क्या क्या रखा है। और इंसान की खिलकत के बारे में जब कहा तो ये कहा गया कि इसके निचोड़ से, यानी इस मिट्टी में से वो चीज निकाली कि जो इसका एसेंस है, इसका खुलासा है, और उससे इंसान को बनाया। तो यानी इंसान उन तमाम चीजों पर हावी है कि जो कुछ मिट्टी से हो सकती हैं, एक बात। और ये सिर्फ किसकी बात है? ये हमारी बॉडी की बात है, हमारे वजूद की बात नहीं है। यानी खलकना, यानी कि इंसान के जिस्म को खलक किया इससे, मिट्टी के खुलासे से। दूसरी चीज और भी है, वह नफख तो फी है मेरे रूही, वो इसके ऊपर है। यानी कि वो जो चीज है, नफख तो फी है मेरे रूही या वान शाना हो खलका नाखर, वो आपको कैपेबल बनाती है टू राइज इनटू द हेवंस। यानी जो आपके अंदर मिट्टी का खुलासा है वो आपको इस चीज के काबिल बनाता है कि आप मिट्टी की तमाम एस्पेक्ट्स पे अपनी मास्टरी को कायम कर लें। और नफख तो फीहे में रूही वाला एस्पेक्ट आपको इस काबिल बनाता है कि यू कैन राइज एंड एलिवेट इनटू हायर डोमेन्स एंड द अबव वर्ल्ड्स। ठीक, तो ये बात वाजे हो गई ना, इंतकाल है, और इंतकाल नफ्स है हकीकतन, या वजूद इंसानी है, ना कि ये जिस्म। अब तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस है, और मेरा ख्याल है कि अगर मैं पहले ही इस बात का एतराफ कर लूँ कि हमारे पास इसकी कोई 100% एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी हम इस बात को 100% कन्विक्शन से नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मौत के लफ्ज़ को कुरान करीम ने बहुत सारे वेरीड वेज में इस्तेमाल किया है, बहुत सारे मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल किया है, और उनको मिलाते 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 आप एक जगह पे कन्वर्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें फॉर एक्सप्लेनेशन बाकी रह जाती हैं। और ऐसा होना हैरत अंगेज़ नहीं है, हैरत की बात नहीं है, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम का जुमला है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मौत के असरार को, बल्कि आपके वसीयतनामे का जुमला है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मौत के असरार पर से पर्दा उठाने में सर्फ किया, लेकिन मशीयत इलाही यही रही कि उस पर पर्दा पड़ा रहे। तो अब इमाम अली अलैहि सलाम जब ये जुमला कहें तो हम आप कहाँ स्टैंड करते हैं? तो ये एक बहुत अल्टीमेट और बहुत डीप मिस्ट्री है जिसको मौत कहा जाता है। थोड़ा सा जो हम समझ सकते हैं या उलमा के बयान से, वो मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। एक आयत हमने आपके सामने सूरह अंबिया की रखी थी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लूकुम बिश्शर वल खैर फितना, जिससे ये पता चलता है कि इस ज़िंदगी में थ्रू आउट आजमाइश है और इसके अलावा कुछ नहीं है, चाहे कभी तकलीफ़ से कभी मज़े से। सूरह आले इमरान 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स मौत का ज़ाइक़ा चखने वाला है, व इन्नमा तुवफ़ौना अजूरकुम यौमल क़ियामा। अगर आप सूरह अंबिया की आयत से इसको मिलाएं तो आपको फौरन ये बात समझ में आ जाएगी कि दुनिया में किसी को अजर नहीं मिलता है, बल्कि दुनिया में जो कुछ भी मिलता है वो हकीकतन आजमाइश है और टेस्ट है। उजूर कब मिलेंगे, अजर कब मिलेगा, रिवॉर्ड या पनिशमेंट कब हाथ में आएगा, यौम क़यामत में। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको जहन्नम से, आग से धक्का दे दिया गया, हटा दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब है। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया की जिंदगी नहीं है मगर एक धोखे का सरमाया, ये जो दुनिया की जिंदगी है ये नहीं है मगर एक ऐसा सरमाया जो सिर्फ और सिर्फ धोखा है, सिर्फ और सिर्फ फरेब नजर है, सिर्फ और सिर्फ एक शराब है। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हमने समझ लिया अजल एक मुद्दत को डिफाइन कर रहा है, तवफ़ा नफ्स के मुंतकिल होने को बयान कर रहा है, ये मौत क्या चीज़ है। अगर आप आम तौर से बात करें तो लोग कहेंगे मौत के माने मर जाना, मुर्दा हो जाना, मैयत हो जाना। मैयत हो जाने से क्या मुराद है? मैयत हो जाने से मुराद ये है कि एक लिविंग बीइंग है, एक ज़िंदा इंसान है, वो चलता है, फिरता है, बोलता है, लोगों से कम्युनिकेट करता है। मैयत होने का मतलब ये है कि उसकी ये सारी एक्टिविटी ख़त्म हो गई, वो जितना भी उसके अंदर मतलब ज़िंदगी की हरारत थी जो कि हरकत से पहचानी जाती है, ये हरकत वाली चीज़ ख़त्म हो गई। तो फिर क्या हुआ? मतलब क्या मौत इस इनएक्टिविटी का नाम है कि एक एक्टिव बीइंग से इनएक्टिव बीइंग हो जाना और उसी हालत में पड़े रहना, या क्या चीज़ है ये? फिर मौत क्या है? अच्छा, इसमें देखें जो सबसे पहली मिस्ट्री सामने आती है, सबसे पहली मिस्ट्री, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन भी उठाऊंगा। सबसे पहली मिस्ट्री खुद ये जुमला है, कुल्लो नफ्सिन वाइकतुल मौत। देखिए ये जुमला खुद एक बहुत अजीब चीज की तरफ हमारी फिक्र को खींच रहा है। कुल्लो नफ्सिन, हर नफ्स, यानी इसमें कोई नफ्स इससे मुस्तस्ना नहीं है, एग्जेम्प्टेड नहीं है, हर नफ्स। वाइकतुल मौत, इसका क्या मतलब हुआ? मौत का जायका क्या? देखें अब यहां पर एक थोड़ा सा आपको ग्रामर पे आना पड़ेगा कि जायका जो है वाइकतुल मौत, इसमें नफ्स फाइल है या मफ़ऊल है? फाइल, समझ रहे हैं ना, जो काम कर रहा है, मफ़ऊल जिस पर काम किया जा रहा है। यानी क्या इस आयत का मतलब यह है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखाया जाएगा, या मतलब यह है कि हर नफ्स मौत का जायका चखेगा या चख रहा है? यानी चखाया जाएगा, इसका मतलब है हम आप बैठे हुए, अब कोई आएगा हमें उंडेल देगा कुछ हमारे अंदर, जो मौत होगा हमें चखना पड़ेगा वो जायका, ये मफूल है। या ये कि नफ्स फाइल है, नहीं, खुद उसे जायका चखना है। यानी नहीं, पहले हम इसके लिटरल मीनिंग पे तो आ जाए ना, फिर उसको और मजीद एनालाइज करेंगे। तो जायकतुल मौत यानी नफ्स फाइल है, वाइक, वाइक यानी फाइल है। तो हर नफ्स मौत का जायका खुद चख रहा है, चख रहा है, खुद ये काम कर रहा है वो। अब यहां पर आके ये चीज बहुत अजीब सी हो गई है कि ये मौत का जायका नफ्स चख रहा है और चखता है और हर नफ्स को ये काम करना है, ये क्या बात हुई? यानी हम तो ये समझ रहे हैं कि हमारे अंदर कुछ हो जाता है, या जैसे अभी हमने अजल और तवफ़ा के माने समझे, तो हम ये शायद सोचें कि भाई जब तवफ़ा हो गया, नफ्स मुंतकिल हो गया अगले आलम में, जैसे मर गया, जिस्म की एक्टिविटी ख़त्म हो गई, एक्टिव लाइफ एंड हो गई, ये मौत आ गई, ख़त्म हो गई बात। इस प्रोसीजर का, इस प्रोसेस का नाम मौत है। मेरे ख्याल है ज़्यादातर लोग यही समझते हैं इसको। तो जायकतुल मौत क्या है कि हर नफ्स मौत का जायका चख रहा है। अब ये जायका जो है ये क्या होता है? मतलब जायके का मतलब है कि आपके सामने जैसे कोई शरबत रखा जाए, कुछ रखा जाए, आप हाथ बढ़ाएं, उसको उठाएं, उंडेलें, पिएं, उसका जायका चखें, तो ये होगा ना जायका चखना। इवन अगर हम बैठे हुए और कोई हमारे गले में शरबत उंडेल दे, तो ये जायका चखना नहीं है, ये जायके का चखाया जाना है, यानी हम मफूल हो गए। लेकिन यह खुदा नफ्स को फाइल करार दे रहा है। ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है मौत के हवाले से, यानी कि जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि मौत खाली किसी इनएक्टिविटी का नाम नहीं है, या जिस्म के हरकत का सुकून से बदल जाने का नाम मौत नहीं है।
थोड़ा फाइल को एलैबोरेट कर दीजिए।
फाइल
समझ रहे हैं वो फेल ऑफ फाइल जो
आप अंग्रेजी में कहते हैं ना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसमें क्या फर्क होता है?
किसी चीज के बारे में बात हो रही है और कोई चीज कर रही है,
यानी आप ये कहें जी
डूअर जैसे जो एक्शन कर रहा है फाइल
जी, यानी आई रीड द बुक,
द बुक इज बीन रेड,
हाँ
हो गया
जी,
रीड है वर्ब, आई है फाइल,
मैं फाइल हूं। अब जब हम कहें द बुक इज रेड बाई मी, तो इस जुमले में मैं मफूल हो गया, यानी उलट के जब आपने बयान किया तो मैं मफूल हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से फाइल यानी जो काम कर रहा है, यानी कि जैसे एक चीज है मौत, एक चीज है नफ्स, और बीच में फेल क्या है, जायका यानी मजा चखना, ये फेल है, ये वर्ब है।
मेरे ख्याल से तो इसमें मफूल नफ्स नहीं लग रहा है,
मफूल नफ्स नहीं है, मफूल मौत है,
फाइल नफ्स नहीं लग रहा है। अब खुद को लग रहा है कि मुस्तदिर या कुछ मतलब नहीं है या कुछ और है, क्योंकि नफ्स इन डेफिनेट,
हर नफ्स जायकतुल मौत, हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है। तो मौत ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही कहेंगे ना, यह सब्जेक्ट क्या कहलाता है, यानी जिस पर काम किया गया, जिस पर काम किया गया, सब्जेक्ट नफ्स जिसने काम किया, ठीक है। और ये इस लिहाज से यहाँ नफ्स काम करने वाला है, मौत वो है जिसका जायका चखा जा रहा है। तो ये एक बहुत अजीब बयान है, यानी कि ये हमें उस एक्टिविटी को इनएक्टिविटी से बदलने वाली चीज से बहुत आगे ले जा रही है, यानी इसमें जायका कहां से आ गया, और हर नफ्स को क्यों पाबंद किया जा रहा है कि वो इस जायके को चखे, और क्या मौत कोई ऐसी चीज है कि जिसका जायका चखा जा सकता हो, और अगर ऐसी चीज नहीं है तो फिर इस अंदाज से उसका जिक्र क्यों किया गया, ये सारे के सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। नहीं ठीक है, आप मेरे साथ हैं या खो गए कहीं बीच में? सही है। तो ये इस लिहाज से यानी खुद कुरान करीम ही हमें गहराइयों में जाने की लीड देता है, यानी ऐसा नहीं होता कि जो कुछ टॉपिक्स डेवलप किए गए हैं वो कोई अपनी सोच से उठा के ले आता है, बल्कि कुरान के इन बयानात से ही लीड मिलती है कि आप इन बातों को इस अंदाज से गौर करें। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज हम करते हैं, पहला सवाल कि क्या कुरान की नज़र में जिस्म का इनएक्टिव हो जाना मौत है? जी, इस सवाल को, यानी पहला क्योंकि सवाल यह हमें यह, क्योंकि हमारी नजर में क्या है कि जिस्म खत्म हो गया, जिस्म लेट गया, जिस्म में से हरकत का करने का पहलू खत्म हो गया, हमने कहा मर गया, ये मैयत हो गया, ये मैयत हो गया। एक इंसान चल फिर रहा है, हम कह रहे हैं जिंदा है, ही इज अ लिविंग पर्सन, ही इज अ डेड पर्सन, और हम मौत को भी इसी हवाले से लेते हैं, ये जिंदा है, ये मुर्दा है, ये मैयत है। कुरान की नजर में मैयत का और जिंदा का यही कंसेप्ट है? क्लियरली नहीं है, क्लियरली नहीं है, नहीं उससे भी ज्यादा क्लियर आया था आपको बताऊं, सूरह अनआम की आयत 122, अवमन काना मैतन फअहयैना हो वजअलना लहू नूरन तमशी बिही फिन्नास। अवमन काना मैतन, क्या वो शख्स जो मुर्दा था, मैयत था, फअहयैना हो और फिर हमने उसको हयात दी और जिंदा किया, वजअलना लहू नूरन और उसके लिए नूर करार दिया, तमशी बेही फिन्नास जिस नूर को लेके वो इंसानों के दरमियान चलता फिरता है। अब ये कुरान किसको मैयत और ही कह रहा है, जो नूर हिदायत से खाली है वो मुर्दा है, यानी कुरान की नजर में जो शख्स हिदायत के नूर से खाली है वो चलती फिरती मैयत है, वो जिंदा नहीं है। अहिया ना हो, किस चीज के जरिए से हमने उसको जिंदा किया, इस हिदायत के जरिए से जिंदा किया। وجعلنا لہ نوراً, اس کے لیے نور قرار دیا, تمشی بہی فی الناس, جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. کیا یہ اس کی مانند ہے جو تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہو اور اس سے نکل نہیں سکتا؟ لیس بخارج منہا. تو جو جہالت کی, حماقت کی تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے وہ حقیقتاً مردہ ہے, میت ہے. جو نور ہدایت سے بہرہ مند ہے وہ حقیقتاً زندہ ہے. اور پھر دوسری وہی ہے جو آپ نے شہید کی, مقتول فی سبیل اللہ کی بات کی, کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. کہو بھی نہیں جو اللہ کے رستے میں مقتول ہو گئے ان کے بارے میں, کہو بھی نہیں کہ وہ اموات ہیں. سوچنا مطلب سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, ولیکن لا تشعرون, لیکن ان کی زندگی کا تم کو شعور نہیں ہے. تو یہاں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو تصور ہماری نظر میں زندہ مردے کا ہے, قرآن کے پاس ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے.
ایسے اگر اس میں دیکھا جائے, کون سی تھی مناجات شعبانیہ
جی,
جس میں ہے کہ ہم تو مردہ ہے اور اللہ حی ہے, ایسی کچھ ہے نہیں کہ اس میں جو ہے وہ اپنے ہم لوگ کو مردہ کہا ہے.
تو ہمارے نفوس وہی چیز ہے نا, کہ جس کے پاس نور ہدایت نہیں ہے وہ حقیقتاً میت ہے. یعنی کہ جیسے اس زمین کو مردہ کہا گیا ہے جس میں سے سبزہ نہیں اگتا, اور جب زمین پر اوپر سے پانی برستا ہے اور اس پانی کے نتیجے میں زمین سبزہ اگانے کے قابل ہو جاتی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے وہ انسان جس کا نفس بیرن ہے, تو یہ کچھ اگانے کے قابل نہیں ہے, کوئی اچھی چیز نہیں نکلتی اس میں سے, وہ میت ہے. جب یہ وحی کا پانی اوپر سے آتا ہے, ہدایت کا پانی آئے اور نفس اس کو جذب کرے, اور اس کے بعد یہ گل و پھول اگانا شروع کرے, تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. وہ زمین کی مانے ابھی ہم اس پہ نہیں آئے. ابھی پہلے تو ہمیں اس چیز کو کلیئر کرنا ہے کہ موت ہے کیا, مطلب کنسیپٹ کیا ہے, مطلب اپنے کنسیپٹ کو ریکٹیفائی کرنا ہے. پہلی اسٹیج تو یہ ہے کہ ہم موت اور میت سے جو مراد لے کے بیٹھے رہتے ہیں, سب سے پہلے ہمیں اس کا قبلہ درست کرنا ہے کہ قرآن کریم کی نظر میں موت اور زندگی کا تصور جدا گانا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ نفس زندہ ہے اور زندہ رہتا ہے جس میں نور ہدایت ہے. ٹھیک ہے, جسم کے قتل ہونے سے وہ ختم نہیں ہوتا, اور وہ نفس مردہ ہے کہ جو تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے, چاہے جسم بظاہر چل پھر رہا ہو وہ مردہ ہے اور وہ مردہ ہی رہے گا. یعنی کہ پھر میں نے آپ لوگوں کو شاید ذکر کیا تھا اور پھر یاد دلا دوں کہ نہج البلاغہ میں دو خطبے ہیں ایک کے بعد ایک, مطلب پیوستہ ہیں. ایک خطبے میں امام علی علیہ السلام نے آیہ الحاکم التکاثر کی تفسیر فرمائی ہے, اور اس سے اگلے خطبے میں آیہ رجال لا تلہیہم بیع ولا تجارت عن ذکر اللہ, سورہ نور کی آیت, اس کی تشریح فرمائی ہے. اگر انسانوں کی یہ ساری گریڈیشن آپ کو سمجھنا ہے نا, یہ دو خطبے پڑھ لیں. یعنی جو کافر ہیں ان کی مثال دی ہے کہ وہ پتھروں کی مانند ہیں, پتھروں کی مانند ہیں جو قبر میں پڑے ہیں, کہ جس طریقے سے پتھر کچھ بھی نہیں ہے, مطلب خام جامد ویسے ہیں, بالکل ختم. تو حیات اور موت کا تصور خدا کی نظر میں, دین کی نظر میں کچھ اور ہے. یہ بات واضح ہو گئی, یہ بات واضح. یعنی یہ کس چیز کا تصور ہے؟ یہ حی اور میت ہونے کا تصور ہے, موت نہیں. ٹھیک ہے, موت کی بات یہ نہیں ہے. حی کون ہے, میت کون ہے, زندہ کون ہے, مردہ کون ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ اگر ہم کچھ ایک امام سجاد علیہ السلام کی دعا اور ایک امام عسکری علیہ السلام کی حدیث کو میں ساتھ ملاؤں, تو تھوڑا سا پھر یہ موت کا مطلب اور واضح ہونا شروع ہوگا. امام سجاد علیہ السلام کی دعا شاید جو رمضان کی دعائیں ہیں پروبیبلی اس میں ہی ہے, اللهم ارزقنا التجافى عن دار الغرور, اے خدا مجھے دھوکے والے گھر سے تجافا نصیب فرما. تجافا, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تجافا کا مطلب کہ ایک چیز اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلی جائے, تو یعنی کہ یہ جو میرا پہلو, یہ میرا جسم, میں اٹیچ ہوں اس دھوکے والے گھر سے, اس سے مجھے تجافا نصیب, مطلب یہاں سے ڈیٹیچ کر دے, یہ اٹیچ, اس اٹیچمنٹ کو ڈیٹیچمنٹ میں بدل دے, اس سے مجھے الگ کر دے. والانابتی الی دار السرور والخلود, اور میری توجہ اور میرے فوکس کو قائم کر اس گھر کی طرف جہاں پر ہیپینس ہے اور ہمیشگی ہے, یعنی کہ جہاں پر خوشی بھی ہے اور جو ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے. اگر دنیا میں خوشی ہوتی ملتی بھی ہے تو وہ فانی ہے. تو میری توجہ کے فوکس کو مطلب یہاں سے ہٹا دے, میرے پہلو کو اس سے مجھے الگ کر دے, ڈیٹیچ کر دے دھوکے والے گھر سے, اور میرے فوکس کو قائم کر اس گھر پہ جو دار سرور بھی ہے دار خلود بھی ہے. والاستعداد للموت قبل حلول الفوت, استعداد یعنی کیپیبلٹی, کیپیسٹی, مجھے وہ کس کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی عطا کر, موت کی. والاستعداد للموت, مجھے مستعد کر, مجھے آمادہ کر, مجھے تیار کر, مجھے کیپیبل بنا, للموت, موت کے لیے. قبل حلول الفوت, قبل اس کے کہ فوت مجھ میں حلول کر جائے, مطلب سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی کہ قبل اس کے کہ میں اس دنیا سے فوت ہوں, متوفی ہوں, اس سے پہلے مجھے موت کے لیے تیار کر دے. اب یہ ایک عجیب ڈائمنشن اور نہیں ایڈ بھی, یعنی اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ فوت اور توفا سے پہلے موت آ سکتی ہے اگر نفس مستعد ہو, اگر تیار ہو, اگر آمادہ ہو. امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک انسان, اگر ایک نفس موت کے لیے تیار ہے تو وہ موت کو ہر طبیب کی دوا سے زیادہ اپنے لیے صحت بخشنے والا پائے گا, موت کے گھونٹ کو. اگر نفس مستعد ہے, تیار ہے, تو وہ موت کے ذائقے کو, موت کے گھونٹ کو ہر طبیب کی دوا سے زیادہ فائدہ مند پائے گا. اب یہاں سے ان سب چیزوں کو ملانے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ, اب ذائقے والی بات سمجھ میں آ رہی ہے. جب امام کہہ رہے ہیں مستعد ہے نفس, یعنی تیار ہے, تو کس بات کے لیے تیار ہے؟ کہ آگے بڑھے اور پیالہ اٹھائے اور پی جائے موت کا. یہ موت کا گھونٹ کیا کرے گا؟ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں ہر طبیب کی دوا سے زیادہ فائدہ دے گا. کیا فائدہ دے گا, کس چیز کا فائدہ دے گا انسان کو؟ اس چیز کا فائدہ دے گا کہ جسم کی وجہ سے انسان کے نفس میں جو فنا کے اثرات پیدا ہو گئے, ان فنا کے اثرات کو ختم کر کے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی کر دے گا. یہ موت کے گھونٹ کا فائدہ ہے. یعنی خدا نے موت کیا رکھی ہے چیز انسان کے لیے؟ موت کا گھونٹ وہ ہے کہ اگر ایک نفس اس کو اپنے اختیار سے پی لے, نہیں اختیار سے پیے گا تو انتقال کے وقت پلایا جائے گا زبردستی. لٹرل اس میں میں بھی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. پہلے اس کو جیسے مثال کے طور پر شہادت ہے, آپ اس چیز پہ کبھی غور کریں. ظاہر ہے ہمارے لیے تھوڑا سا سوچنا مشکل ہے, کہ میں آپ کو کچھ مثال ایک دیتا ہوں. ایک احد میں ایک نوجوان شخص تھا جس کا نام تھا حنزلہ. جب پیغمبر اکرم احد کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو ان کی اس سے ایک دن پہلے شادی بھی تھی. پیغمبر اکرم نے خود ان کو چھوڑ دیا کہ وہ ہے. وہ صرف ایک رات اپنی دلہن کے ساتھ گزارنے کے بعد صبح چل پڑے وہ, ٹھیک ہے, اور مطلب اس حالت میں کہ وہ پاک نہیں تھے. وہ وہاں پہنچے ہیں احد میں, پیغمبر اکرم کے مطلب لشکر, اسلامی لشکر کے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور شہید ہو گئے, مقتول ہو گئے. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ حنزلہ وہ ہے کہ جس کو ملائکہ نے زمین و آسمان کے مابین غسل دیا, یعنی جنت میں لے جانے سے پہلے پاک کیا, ملائکہ نے غسل دیا اور پھر اس کے بعد جنت میں داخل کیا. اسی طریقے سے جناب جعفر طیار کا بہت مشہور ہے جنگ موتا میں, کہ جب آپ علمدار تھے لشکر کے اور اس کے بعد آپ کا ایک بازو بالکل وہی جناب عباس جیسی شہادت آپ کی تھی, تو خدا نے فرمایا کہ خدا نے جعفر کو ان دو بازوؤں کے بدلے میں دو پر دیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ ملائکہ کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا ہم اس کو ویژولائز کرنے کی کوشش کریں کہ یہ لوگ, یعنی کہ یہ دو, اور ایسی بہت ساری مثالیں, خود ابھی انقلاب کے اندر ایسی بہت مثالیں پائی جاتی ہیں, کہ یہ افراد جس کی ابھی ایک رات پہلے شادی ہوئی ہے, جو مطلب ہے کہ ایک ایلیویٹڈ پوزیشن ہے, رسول کے چچا زاد بھائی ہے, اور مطلب یہ ایلیویٹڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کے لوگوں کے پاس موقع ہوتا ہے کہ اپنے کو بچائیں, بچا سکتے ہیں آرام سے, زیادہ اچھی پوزیشن میں ہوتے ہیں. یہ کس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ مطلب جب انہیں یہ بات پتا ہے کہ ہم جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے, مطلب یہ جسمانی زندگی ختم ہو جائے گی, اسی میں کہیں پر وہ موت کا گھوٹ چھپا ہوا ہے اس چیز میں ہی. اور یعنی اس کو اگر میں تھوڑا سا اور الیبوریٹ کروں تو موت کا گھونٹ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون میں, یعنی کہ جب انسان اس چیز کو ریئلائز کر لے کہ میں اول تا آخر صرف اللہ کے لیے ہوں اور میں کسی طرف بھی بھاگوں پلٹ کے ادھر ہی جانا ہے, تو وہ صرف اور صرف اپنی ڈیسٹینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا ہے. میں آپ کو عرض تو کر رہا ہوں کہ جیسے انا للہ, کہ جس دن ہم نے یہ ریئلائز کر لیا کہ ہم صرف اور صرف خدا کے لیے ہیں اور ہمارا پلٹنا جو ہے اللہ کی طرف ہے, اس دن ہم موت کا گھونٹ پی لیں گے. اور عرفہ اس کو کیا کہتے ہیں, اس کیفیت کو مرگ اختیاری. اور عرفہ کے اصطلاح میں یہ بہت مشہور ہے یہ جملہ, مرگ اختیاری. یعنی ایک موت وہ ہے جو کہتے ہیں کہ جو انتقال کے وقت آئے گی, توفیٰ کے وقت آئے گی. مرگ اختیاری یعنی ایک موت وہ ہے کہ جو انسان اپنے اختیار سے جس کا گھونٹ پیتا ہے, کیونکہ خدا نے نفس کو اختیار دیا ہے موت کا گھونٹ پینے کا. خدا کہہ رہا ہے نفس ذائقۃ الموت, نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. تو جب خدا نے نفس کے حوالے یہ چیز کر دی تو میرا اور آپ کا اختیار ہے. جب استعداد پیدا کر لیں, جب استعداد پیدا کر لیں, امام علیہ السلام کے جملوں کی موجودگی میں, جب کیپیبلٹی حاصل کر لیں آگے بڑھیں اور وہ گھونٹ اٹھا کے پی لیں.
نیگیٹو وے میں بھی ہو سکتا ہے کہ جو انسان اسے سیدھے سوسائیڈ کرنے کو حرام کو کیا ہے, کہ اگر اس کا مطلب یہ سوسائیڈ اگر
نہیں, اس کا دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا موت سے مطلب ہے کہ اپنے کو مار لیں. اسی لیے میں نے پہلے آپ کو موت اور حیات کے معنی سمجھائے. موت کا مطلب یہ نہیں کہ جا کے کوئی اپنے گردن پہ چھری پھیر لے. موت کا مطلب یہ ہے کہ نفس انا للہ و انا الیہ راجعون کی حقیقت تک پہنچ جائے. ہم شاید ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے, اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس کو اگر آپ مجھ سے بہت زیادہ کہیں گے نا کہ اس کی انتہا تک پہنچا دیں تو میں نہیں کر سکتا اس کو. یعنی دیٹ از اونلی, دیٹ کین اونلی بی این ایکسپیرینس جو ہر نفس کو خود کرنا ہے ایک وقت پہ آ کے. اچھا میں اس میں ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, پھر بات آج کی حد تک ہم اس کو تمام کریں. ایک اور بہت انٹرسٹنگ پہلو ہے اس کا قرآن میں, यहाँ तक बात मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी। क्योंकि ये इतनी जल्दी समझ में आना भी मुश्किल। नहीं, मैंने ये कहा कि जब इंसान इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की हकीकत को पा लेता है तब नफ्स मौत का घूंट मौत का जायका चख लेता है। नूर हिदायत, यानी कि नूर हिदायत जिसके अंदर रोशन हो वो हई है, और जो तारीकियों और जुलमात में फंसा हुआ है वो मैयत है, चाहे उसका जिस्म चलता फिरता नजर क्यों ना आ रहा हो।
इसका मतलब ये हुआ कि मौत का मजा चखने आपको मतलब मैयत होना जरूरी नहीं है।
हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। नहीं वही चीज है ना, बेसिकली इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन उसी वक्त सामने आ रहा है कि जब इंसान के सामने हर वो चीज आए जो उसके और खुदा के दरमियान रुकावट बनती है, यानी चाहे समरात हो, चाहे तकालीफ हो, चाहे मुख्तलिफ चीजें हो, जो पांच चीजों का जिक्र है, और उन तमाम चीज़ों से गुजरने के बावजूद नफ्स इस हकीकत को गुम ना करे कि इन्ना लिल्लाह। ठीक है, यानी कि जो नफ्स इस बात के कैपेबल हो कि जिंदगी में जो तकलीफ आए जो खुशी आए और उनमें से कोई भी चीज़ नफ्स को डाइवर्ट नहीं कर पा रही है, अटेंशन किस चीज़ से डाइवर्ट नहीं कर पा रही, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसने मौत का जायका चख लिया। और मौत का जायका चखने का नतीजा क्या होगा कि नफ्स में से फना वाले सारे असरात खत्म हो जाएंगे और नफ्स बाकी हो जाएगा, बका बका की लज्जत को चखेगा। तो मौत का घूंट खुदा की अजीम तरीन नेमत है, मौत का घूंट खुदा की अजीम नेमत है, इसीलिए हर वली हर मासूम इसकी तमन्ना करता है। लेकिन हम शायद ये समझते हैं कि वो ये चाहते हैं कि मर जाएं, मैयत हो जाएं। मैयत होना अलग है, मौत का जायका चखना अलग है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि शायद अभी बात बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी, इसको जितना आप गौर करेंगे तो मैयत होना, मुर्दा होना अलग चीज है और जायका मौत चखना बिल्कुल अलग चीज है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, उसका हकीकत से बिल्कुल कोई ताल्लुक ही नहीं है।
मौत का ये हुआ कि इट्स अ लिफ्टिंग ऑफ द वेल बिटवीन दिस वर्ल्ड एंड द हेरआफ्टर, दैट इज दैट।
यानी उसको मैं थोड़ा सा और आसान आसान करके बयान करूं कि जब नफ्स इस डोमेन में आया, मटेरियल डोमेन में, तो जिस्म से ताल्लुक की बुनियाद पर नफ्स में हर वो क्वालिटी पैदा हो गई जो फना फना वाली है। ठीक है, यानी इस जिस्म की वजह से मैं ये सोचता हूँ, अरे मुझे ये तकलीफ हो रही है, अरे मुझे ये हो रहा है, ये चीज़ मुझसे छिन जाएगी, इसके पीछे भागो वरना ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ये सब की सब क्या है, ये सब की सब जिस्म की वजह से मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। यानी नफ्स अपने आप को जिस्म से कंटैक्ट की वजह से हर उस चीज़ से जोड़ रहा है जो फ़ानी है। जब खुदा उसको प्रोसेस से गुजार रहा है, जैसे आपने इन्ना लिल्लाह वाली आयत पढ़ी, अगर आप उसको जाके देखें, शायद 150 वगैरह है सूरह बकरा में, के वला नब्लुअन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस समरात, पांच चीज़ें कि हम इनको बला में डालेंगे खौफ से, भूख से, और उसके बाद यानी कि किस चीज़ की कमी से, माल की कमी से, जान की कमी से, फलों की कमी से, फल यानी फ्रूट्स ऑफ लाइफ जो भी हमारे, व बशर साबरीन, उन साबिरों को बशारत दे दो, इज़ा असाबत को मुसीबतन, कि जब उन पर मुसीबत आती कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी जैसे आप इस किस्म के जुमले सुनेंगे कि अपने बदतरीन फियर के मुकाबले में खड़े हो जाओ, उसके बाद तुम आजाद हो। यानी कभी हमने इसको गौर किया है कि हमारे फियर्स और हमारे एप्रिहेंशंस किस तरीके से जिंदगी में हमको कैदी बनाए रखते हैं? इस चीज पर हमने कभी गौर किया है? हमारी टेम्पटेशंस इसी माल और नफ्स और समरात के हवाले से कैसे हमें नाक में नकील डाल के खींचती फिरती हैं? यही पांच चीजें जिक्र हैं इसमें। तो ये खौफ है, भूख है, माल, जान और फलों की कमी। जो इन पांच स्टेजेस से गुजर जाए, ओके, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊ, हम शुरू से ही खुदा के लिए ही थे और उसी की तरफ लौट के चले जाएंगे, हमें नहीं फर्क पड़ता इससे, गुजर गया वो, ये मौत का घूंट है।
खौफ, माल,
खौफ, भूख और माल, जान और समरात, यानी फलों की कमी। तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की हकीकत तक पहुंचना मौत का घूंट है। अब ये नफ्स के अख्तियार में, जब चाहे पी ले। और इमाम अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? मुझे तौफीक दे कि मैं अपने इंतकाल से पहले इस घूंट को पी लूं। वल मुश्किल है। अच्छा, अब मैं एक आयत भी पढ़ता हूं इसी हवाले से, थोड़ा सा मुझे इजाजत दे रहे हैं टाइम की? सूरह मोमिन नंबर 40, सूरह का नंबर 40 है, आयत 10 और 11 है। यहां पर जिक्र है काफिरों का, इन्नल्लज़ीना कफरू युनादाउना लमक्तुल्लाहि अकबरु मिन मक्तिकुम अन्फुसकुम। जिन लोगों ने कुफर किया उनसे पुकार के कहा जाएगा कि आज के दिन जितना ज़्यादा तुम्हें अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि हमने अब क्यों ऐसे काम किए कि इस हाल को पहुंच गए, उससे ज़्यादा गुस्सा खुदा को तुम्हारे ऊपर है। इद तुदउना इलल ईमान फतकफुरून। और खुदा को तुम पर गुस्सा क्यों है कि खुदा तुमको सारी जिंदगी ईमान की तरफ पुकारता रहा और तुम उससे मुंह मोड़ के इधर उधर उधर चलते रहे। कालू, वो क्या कहेंगे? रब्बना अमत्तनाथनतैन व अहयैतनाथनतैन। वो ये कहेंगे कि ऐ हमारे रब, तूने हमको दो बार मौत दी और दो बार जिंदा किया। फा तरफना बेजुनूबना, पस हम आज अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, इतराफ करते हैं। फहल इला खुरूज मिन सबील, पस क्या यहां से निकलने का कोई रास्ता है इस मुसीबत से? दो मौतें, दो जिंदगियां। और ये कब बात हो रही है? हशर में, कयामत में।
ये तो उसकी भी है, रजत के लिए भी यूज होती है।
नहीं नहीं, अभी नहीं, ये काफिरों पे, एक्सक्लूसिवली काफिरों का जिक्र है।
किसी और के लेक्चर सुन रहे थे, उन्होंने इसको रजत में।
हाँ, लेकिन यहाँ पर मैंने, मुझे पता है कि इस तरीके से उसको जिक्र किया जाता है कि दो मौतें कौन सी हैं, दो जिंदगियां कौन सी हैं। लेकिन आप इसके सियाक पे अगर गौर करें कि ये चीज खुदा नहीं कह रहा कि हर इंसान के साथ खुदा ने यह किया है कि उसको दो मौतें और दो जिंदगियां दे दी हैं, बल्कि ये कौन है? काफिर जब वहां पर कयामत में खुदा के सामने खड़े हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हमें दो मौतें, दो जिंदगियां दी हैं। अब ये दो मौतें और दो जिंदगियां कौन सी हैं? यानी हम जैसे अल्लामा तबातबाई ने इसको बयान किया है कि इस जिंदगी से निकलना पहली मौत, उसके बाद बरज़ख पहली जिंदगी, उन्होंने बरज़ख को पहली जिंदगी माना है। इस वजह से माना है कि इस दुनिया में ज़्यादातर अफराद जिंदा नहीं है। कुरान की इस तारीफ के हवाले से इस दुनिया में ज़्यादातर अफराद मैयत हैं या सो रहे हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जैसे फरमाया, नासु नियामुन, इंसान सो रहे हैं सब लंबी तान के, ठीक है। तो उसी को उन्होंने कहा कि पहली मौत यानि इस दुनिया से बरज़ख में जाना, पहली जिंदगी बरज़ख की जिंदगी, दूसरी मौत बरज़ख़ से आखिरत में जाना, दूसरी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी, यानी दो मौतें दो हयात, कि तूने हमको दो मौतें दी, दो मरतबा मैयत किया, इमाता किया, दो मरतबा अहिया किया, ठीक। लेकिन अब इससे एक बहुत, इसके अलावा एक बहुत अजीब बयान है, यानी कि ये उन लोगों के जवाब में है कि जो ये कह रहे हैं कि सबके लिए ऊपर ये एप्लीकेबल है, यानी सारे इंसान चाहे मोमिन हों चाहे काफिर हों, हर नफ्स जो है वो इसी तरीके से दो मौतें और दो जिंदगियां एक्सपीरियंस करके कयामत में खड़ा होगा। नहीं, सूरह दुखान, सूरह दुखान का नंबर है 44। और इसके आखिर की आयतें हैं, इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन। क़यामत में जिक्र हो रहा है मुत्तकीन का, वो हमने जिक्र आपको सुनाया था सूरह मोमिन में काफिर का, कुफार का। इन्नल मुत्तकीना, बेशक मुत्तकीन है मकाम अमीन में, अमन वाले मकाम में मौजूद है। फी जन्नातिम व उयून, वहाँ पर क्या है, जन्नतें हैं, जन्नात हैं, एक जन्नत नहीं है, बहुत सारी जन्नतें, क्योंकि हर अमल हर नेकी के बदले अलग अलग जन्नतें, इल्म की जन्नत अलग, इबादत की जन्नत अलग, मारिफत की जन्नत अलग, सो ऑन। फी जन्नातिम व उयून, जन्नतें हैं और चश्मे हैं, स्ट्रीम्स हैं। यल बसूना मिन सुंदसिन व इस्तबरक़िम मुतकाबिलीन, बेहतरीन रेशम की पोशाक पहने हुए एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए होंगे। कज़ालिक वज़वजना हम बहूरन ईन, और उनका इज़वाज हम करेंगे हूर ईन से। यदऊना फ़ीहा बेकुल फ़ाकिहतिन, यानी कि ये उनकी कैफियत है। और फिर उसके बाद है ला यज़ूकूना फ़ीहल मौत इल्लल मौततल ऊला, वो नहीं जायका चखेंगे मौत का वहां पर मगर पहली मौत, इल्लल मौत तलूला, यानी मोमिन के लिए सिर्फ एक मौत है, ये बार बार मरना और अहिया होना, ये काफिर के लिए। तो इसी से वो बात समझ में आती है कि जब मोमिन ने मौत का घूंट ले लिया अपने अख्तियार से, नफ्स मोमिन ने, वो फानी से बाकी हो गया, अब उसके लिए कोई दूसरी जरूरत नहीं है कि उसको ये घूंट दोबारा पिलाया जाए। काफिर जिंदगी भर गाफिल रहा इस हकीकत से, खुदा ने इंतकाल तवफ़ा के वक्त उसको मौत का घूंट पिलाया, लेकिन जिस तरीके से कि आप बीमार को खाली एक घूंट से थोड़ी सही कर देते हैं, एक घूंट पिलाने से उसको फायदा नहीं हुआ। उसने फिर बरजख में एक अरसा गुजारा, फिर घूंट पिलाया गया, फिर भी फायदा नहीं हुआ। तो ये जो जिस चीज की तरफ दावत दी गई है, जायकतुल मौत, ये वो घूंट है कि जिससे नफ्स अगर पी ले, जिसका जायका चख ले, तो क्या हो जाएगा, फानी से बाकी हो जाएगा। जितने भी ये असरात हैं फना के नफ्स के अंदर, के जो फानी चीज़ों से दिलबस्तगी है, सब ख़त्म हो जाएगी। यानी इसके मौत के घूंट पीने का नतीजा क्या होगा, जैसे मैं आपको मिसाल दूं आज की ज़िंदगी में, ख़ुद आगा खुमैनी की मिसाल बेहतरीन मिसाल है। इन्हें बाकी उरफा क्योंकि अपने मामलात शो नहीं करते, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता होता, लेकिन आगा खुमैनी की जो मिसाल है कि उनकी लाइफ हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो इस किस्म के वाक़यात आपको मिलेंगे कि जब 63 में शाह ने मतलब उनको उठा लिया था घर से, अगवा करा लिया था, तो उस वक्त जो उनको ड्राइवर लेके जा रहा था वो पता नहीं किस किस रास्ते से गया कि लोग सामने ना, वो खुद खौफजदा था और ये उसको तसल्ली दे रहे थे, यानी जैसे कुछ होने ही नहीं जा रहा, हम अगर हमारे साथ ऐसी कोई चीज़ हो तो हमारे वैसे ही होश उड़ जाएंगे, ये क्या, वो उसको तसल्ली दे रहे हैं कि भाई सुकून से रहो, क्यों इतना परेशान हो। आपने कुम और तेहरान के बीच में वो देखा होगा दरियाचा नमक, सी, सॉल्ट सी है पूरा। और वहां पर यह था कि शाह ने बहुत नौजवानों को उसमें फेंका है ऊपर से ले जा ले जाके, इनकलाब के दौरान इनको भी ले गए थे बिठा के जहाज में। तो जब उसके वहां करीब पहुंचे, खुद उठ के दरवाजे तक चले गए और कहें दरवाजा खोलो मैं खुद कूद जाऊंगा, तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है। यानी एक ऐसा इंसान के जिसके लिए कोई इसमें शक शुबे की गुंजाइश ही ना हो कि मेरी जिंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में। या जब बेटे की शहादत हुई थी मुस्तफा की, तो उस वक्त भी कि जब दूसरे लोग थे उन्होंने ये खबर सुनाई नहीं जा रही थी और मतलब वो रोने लगे आखिर में, तो उन्होंने खुद कहा कि अच्छा मैं समझ गया कि मुस्तफा को कुछ हो गया है, बड़े बेटे जो काफी मतलब अच्छे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक हाथ अपने सीने पर रखा, एक हाथ जमीन पर रखा और थोड़ी देर खामोश बैठे रहे। तो जो उनके साथ लोग थे उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जमीन की मोहब्बत, मिट्टी की मोहब्बत मिट्टी को वापस कर रहे हैं। उसके बाद नॉर्मल हो गए। और एक अजीब जुमला उन्होंने कहा कि ये जो शहादत है मुस्तफ़ा की, ये अल्लाह के छुपे हुए लुत्फ करम में से एक लुत्फ है। उफ़, इन यके अज अल्ताफ खफी इलाही अस्त। अपने बेटे की मौत को, और बिल्कुल यही हुआ जो इनकलाब 15 साल से रुका हुआ था, वो मुस्तफ़ा की मौत के बाद सारे दरवाजे खुल गए। किस तरीके से कि उनकी मजलिस तरहीम हुई, उस पर फायरिंग की उन्होंने, फौजियों ने फायरिंग, शाह की फौज ने फायरिंग की, जो वहाँ शहदा थे उनके 40वें की मजलिस दूसरे शहर में, उनके 40वें की मजलिस दूसरे शहर में, पूरा ईरान फ्लेयर अप हो गया। ये उनका जुमला था कि इन यके अज अल्ताफ खफी इलाही अस्त, ये वो शख्स है कि जिसके बारे में आप कहेंगे कि इसने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की हकीकत को इस जिंदगी में पाया, और ये वो शख्स है कि जिसने मौत के उस जायके को चख लिया है। तो ऐसे लोग जीते जी जन्नत में होते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अली अलैहिस्सलाम का वो खुतबा भी पढ़ के सुनाऊंगा, ये मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। ऐसे लोग जीते जी जन्नत में होते हैं, ऐसे लोग इस जिंदगी में होते हुए आखिरत के मरहलों को तय कर चुके होते हैं। तो मौत इज समथिंग रियली मिस्टीरियस एंड वेरी वेरी डिफरेंट, जिसके घूंट को चखने का खुदा ने नफ्स को दावत दी है। अगर मुस्तैद हो, अगर इस्तेदाद रखते हो, चख लो इसे, इसको पी जाओ। तो जितनी मेरी बिसात थी, मैं और मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मुझे कतन उम्मीद नहीं है कि चीज़ें बातें ज़्यादा समझ में आई होंगी, लेकिन इंशाल्लाह इसको फिर हम थोड़ा और एलेबोरेट भी करेंगे अगली दफ़ा। और मैं कुरान करीम से आपको 3 वाक़े जो बिल्कुल एक के बाद एक हैं आयतुल कुर्सी के बाद, 3 वाक़यात हैं मौत के ही हवाले से जो मौत के मुख्तलिफ पहलुओं को समझाते हैं, डिफरेंट डायमेंशन मौत की। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा उसका हम जिक्र करेंगे। आप लोग, मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सवालात और क्रिटिसिज्म जनरेट करें, तनकीद करें इस पर, तक जी बिल्कुल। मौत खुदा का एक अजीम तोहफा है जो नफ्स को फ़ानी से बाकी कर देता है।